ऋक्ष अरिष्टने मेहेशस्तेनो बृहस्पतिर्दधातो प्रेखदस्वा मरुतः वृष्टिमादरः शुभञ्जवान विदधे कुजगमायाः अग्निर्जिवामनिवः सूर्यजिघ्रसो विश्वेनो देवा अभिसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः सणुयामदेवा भद्रं पशेवाक्षभिर्जजतराः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुभागुंसस्तनोभिर्वसेमहि देवहितञ्जदायुः सदमिन्नु सरदो अन्तिदेवा जदरानश्चकरा जरसन्तनूनाम् पुत्रासो जदपितरो भवन्ति मानो मदिहारीरिखतायुर्गन्त्योः आदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्भादा सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमतिर्जनितवाम् हस्तो प्रक्षाल्य हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा ध्यायिता आराधयामि मणिसन्निव आत्मलिङ्गम् मायापुरी हृदय पङ्कज सन्निविष्टम् सद्या नदी विमलचित्तिजलाभिषेकै नित्यम् समाधिकुसुमेन पुनर्भवाय ॐ भगवते स्वामि सदाशिवाय नमः सर्वोपचारणार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि हि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरम्मेलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकार व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः सर्वोपचारणार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि गुरुशङ्कर भगवान् की जय गङ्गामैया की जय सद्गुरुदेव भगवान् की जय नमः पार्वतीपदये हर हर महादेव
ॐ नमः शिवाय हरि ॐ नमः शिवाय
నమోస్తు రామాయశ లక్ష్మణాయ దేవ్యై చ తస్యై నికాత్మజాయ నమోస్తు రుద్రేంద్రయ మానదేవ్యో నమోస్తు చంద్రార్కమరుదగణేభ్యో నమః పరమహంసాస్వాదితి చరణకమలకి నమకరందాయ భక్తిజనమానస నివాసాయ శ్రీరామచంద్రయ విశ్వసర్గై సర్గాది నవలక్షణ రక్షితం శ్రీ కృష్ణాక్షం పరం రామ జగద్ధామ నమామి తత్ నారాయణం నమస్కరత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయ ముదిరే గురుర్ బ్రహ్మ గురుర్విష్ణుర్ గురుర్దేవ మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః అఖండ ముండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరం అఖండ ముండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరం తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః శ్రీరామ జయరామ
సద్గురుదేవ భగవాన్ ने की
శంకరః శంకరోతు తే శంకరః శంకరోతు భగవాన్ శంకర్ ఆప్కా హమారా కళ్యాణ కరే శివ వివాహ మే గణేష్ జీ కా పూజన్ హువా హై ప్రశ్న ఖడా హోతా హై కి పితా కే వివాహ మే పుత్ర కా పూజన్ कौन विश्वास करेगा। कहा गया संशय नहीं करना। जब राम दशरथ के यहां नहीं आए थे तब भी राम थे क्या? वसुदेव के यहां कृष्ण जब नहीं आए तब भी कृष्ण थे। ये पंचदेव अनादि हैं। सृष्टि के प्रारंभ में ये पांचों देवता प्रकट होते हैं, पांच महामंत्र प्रकट होते हैं, पंच महाभूत होते हैं, ये सब पांच पांच सत्य हैं। अच्छा, जब सृष्टि प्रारंभ होती है तो तत्त्वमसि तुम वही हो, माने ईश्वर हो, ओंकार महामृत्युंजय गायत्री और चिंतामणि षोडशी मंत्र ये पांच प्रकट होते। तो गणेश सृष्टि के प्रारंभ में, गणेश बाद में हुए तो लीला है। दशरथ जी के यहां राम आए तो भक्त पर्वत्सा है ये। महाराज मनु ने 23,000 वर्ष तक कठिन तप किया, प्रभु राम जब प्रकट हुए वर मांगो और चाहो समान सुत प्रभुषण कवन दुराव आपकी तरह पुत्र चाहते। तो भगवान ने कहा मैं अपनी तरह ढूंढने कहां जाऊंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाता। मनुराज ने सोचा कि इतनी कठिन तपस्या के बाद ही आए हैं तो मेरी संतान इतना तप कैसे कर पाएगी, इसलिए उनकी सुगमता के लिए ये मेरे पुत्र बने और लीला करें और लीला को जो पढ़ें सुने उनका कल्याण हो जाए, इसलिए ऐसे। द्रोण और धारा, नंद और यशोदा पहले तप किया उन्होंने पुत्र पाने के लिए प्रार्थना की। वसुदेव देवकी ने भी तप किया वर्मा। तो देवता अनादि, इसलिए भगवान शंकर पार्वती अम्बा के विवाह में गणेश जी का मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभ भवान को सुन संशय करिय जने सुर अनाद जिए। सुनकर संशय नहीं करना भाई, माता पिता के विवाह में पुत्र का पूजन कैसे हो रहा है। तो अनाद देवता है, पद्म पुराण में ये भी प्रसंग आता है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण रामावतार से पहले रामायण लिखी है। क्या महाराज दशरथ के यहां जब राम नहीं आए से पहले रामायण लिखी जाती, सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? क्या बात, बोलिए शंकर भगवान की। एक बार सेट कर लिया जाए और प्रतिदिन वैसे ही रखा जाए तो समस्या नहीं होगी। तो गणेश का पूजन शंकर पार्वती के विवाह में हुआ है। अब बारात की विदाई होनी है तो एक ब्राह्मणी से मैना जी ने कहा पार्वती को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दे दो। ये जानते हुए पार्वती जैसी पतिव्रता कोई दूसरी है ही नहीं, पर उस माध्यम से जगत की नारियों को कुछ पता लगे, इसलिए सुन सीता तब नाम सुमिर नारी पतिव्रत करहिं तो ही प्राण प्रिय राम कहे कथा
संसार हित।
संसार हित जितनी कथाएं हैं जगत के लिए संसार के लिए, पार्वती जी को जो उपदेश दिया गया वो केवल पार्वती के लिए नहीं है, वो सारी जगत की नारियों के लिए। पर जगत की नारियां तो ऐसे हैं सुन लेंगी सिर हिला देंगी मानेंगी नहीं। बोलो शंकर भगवान की
जय।
अर्जुन ने गीता सुनी कह दिया मेरा मोह नष्ट हो गया, और यहां सैकड़ों बार सुन चुके अभी तक जरा सा भी मोह में फर्क नहीं पड़ा
और बढ़ गया।
क्या समझा, जबकि ये बात संसार के लिए कही गई। आदि शंकराचार्य भगवान गीता का भाष्य लिखते हुए लिखते हैं अर्जुन निमित्ती कृत्यो जगद हिताय आह भगवान वासुदेवः। जगत कल्याण के लिए अर्जुन को बहाना माध्यम बना के भगवान ने जगत कल्याण के लिए गीता सुनाई। अर्जुन को गीता सुनाई हो नहीं भाई, हम तो माइक का माध्यम लेके बोल रहे हैं। हम माइक को सुना रहे हैं कि आप लोगों को सुना रहे हैं? इसी तरह से जो उपदेश चलता है एक माध्यम बना लिया, लेकिन उससे सारे जगत के लिए होता है और उसे हमें अमल करना चाहिए। ब्राह्मणी पहुंची है, पार्वती अम्बा सामान्य लड़की की तरह बैठी, आंसू बहा रहे हैं। यद्यपि उन्हें रोने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बताया कि जब माता पिता से बिछोड़ने लगे तो कन्या को अपना भाव दिखाने के लिए कैसे माता पिता से, भाई भाभियों से, नहीं करुणापूर्ण हृदय से कैसे विदाई लेनी होती है। ये पार्वती हम ब्रह्माणी ने कहा, गिरिए अब तुम ससुराल जाओगी, ससुराल में कैसे रहना है, किन नियमों का निर्वाह करना है, उन नारियों का अनुसरण करना, उनकी नकल करना जिन्होंने अपने तपोबल से बड़े बड़े देवताओं को भी झुका दिया है, अहिल्या, अरुंधति, अनसुईया, सांडली, लोपामुद्रा। नकल करनी हो तो उनकी नकल करनी है, ये स्टेजों पर नाचने वालियों की नकल नहीं करनी होती, ये तो पैसे के लिए भिखारी बिचारी बिकी हुई है, डायरेक्टर जैसा कहेगा वैसे उनको करना पड़ता क्या? तो वो प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो यह है कि जो हमारे यहां शांडिली ने अपने कोड़ी पति को, वृद्ध पति को जवान बना दिया पातिव्रत के प्रभाव से। पातिव्रत का मतलब है कि पति को छोड़कर किसी तरफ न जाए, नहीं स्वप्न में भी न जाए, प्रत्यक्ष ने कल भी कहा था कि संयम, साधना, सिद्धि, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर साधना करते हुए भी आपको सफलता नहीं मिल रही तो कहीं वीक पॉइंट है जीवन में, कहीं न कहीं कोई त्रुटि है आपके अंदर। अन्यथा रू शराब पी जाए ताजी ताजी निकली हुई और नशा आना है, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ? आप भजन कर रहे हैं, ना आपको इष्ट का दर्शन हुआ, ना आपके मन में शांति का उदय हुआ, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, देखना चाहिए। भगवान के दर्शन भले न हो लेकिन शांति तो मन में आ जाए क्या? संसार से मन तो हटने लगे, प्रभु में लगने लगे, यही समझ लो भगवत दर्शन है। और भगवान क्या कहते हैं, बसे यशेन्द्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसकी इंद्रियां बस में है उसकी बुद्धि शांत है, उसकी बुद्धि में उथल पुथल नहीं, अशांति बेचैनी नहीं है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, प्रज्ञा माने बुद्धि कहलाती है, प्रतिष्ठिता माने एक जगह। अब बुद्धि एक जगह हुई और सफलता मिली, और जब तक जीवन में कुछ संयम नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, तब तक बुद्धि एकाग्र हो ही नहीं सकती, बाहर बाहर घूमते रहेंगे। ऐसी ऐसी नारियां हुई हैं इतिहास में। एक ब्राह्मण सुअर ने ब्राह्मण को मार दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जिला सके क्या? उस समय माता क्या नाम था, उन्होंने जिला दिया उसे,
सावित्री, सत्वान सावित्री
नहीं, अत्रि की पत्नी का नाम क्या,
अनसुईया,
अनसुईया उसने जिला दिया। महाराज पांडु की दो पत्नियां हैं, कुंती और
माद्री,
माद्री बहुत ज्यादा सुंदरी थी और बहुत ज्यादा पतिव्रता भी थी। सुंदरता के साथ पवित्रता रह जाए ये बहुत कठिन बात होती। महाराज पांडु को अभिशाप हो गया था कि पत्नी के पास काम भाव से जाओगे तो मृत्यु हो जाएगी। कथा तो मालूम है, कई बार सुन चुके हैं। एक ऋषि बालक था, मृग का रूप बना के पत्नी को मृगी बना के विहार कर रहा था, तो मैथुन काल में मृग समझ करके महाराज पांडु ने बाण मारा था। जानकारी है, सब पुराने श्रोता हो ना इसलिए। उसकी पत्नी ने फिर विलाप करते हुए कहा था कि रति काल में तुमने मेरे पति का वध किया है, तुम जब अपनी पत्नी के पास काम भाव से जाओगे तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। महाराज पांडु काम भाव से नहीं जा पाते। एक बार शिकार खेल के कहीं आए और महाराज पांडु सो गए दिन में। यद्यपि दिन में ज्यादा सोना अच्छा नहीं मानते हम, आधा घंटे घंटे बैठे, थकावट थी, 4 बजे आए लेटे, सूर्यास्त होने जा रहा है। आज मुसलमानों के नियम कड़े हैं, हिंदुओं के नहीं। अगर मुसलमान को रोजा पढ़ना है, क्या इबादत करनी है, तो जब समय निश्चित होगा, ट्रेन हो, प्लेन हो, सड़क हो, क्या प्लेटफार्म हो, कहीं भी हो, अपना चादर बिछाएगा। हम जयपुर जा रहे थे, एक नौजवान मुसलमान दाढ़ी वाड़ी रखे था थोड़ा, तो हमने सोच समझा कि ये हज कर चुका होगा। बात उसको जयपुर जाना था, हमको शायद कुछ आगे जाना था, सो गए। हम तो उठ गए पहले, आंख नहीं। हमने कहा रे भाई जयपुर आ रहा है, तुमको जाना था ना, बात बात में पता लग गया। हड़बड़ा के उठा और रोजा का समय हो गया उसने जोन करें, उसने चटपट हाथ धो पैर चादर बिछाई हुई, ट्रेन चल रही है, चादर बिछाया और वही बात। उनके अभी थोड़े नहीं आए, हमारे नहीं रहे। कहने का मतलब महाराज पांडु की नींद लग गई, सूर्यास्त होने जा रहा है, महाराज उठे नहीं, सोते पति को उठाना ठीक नहीं, और संध्या का समय निश्चित है, सूर्यास्त से पहले सूर्यनारायण को अर्घ देना ये परंपरा है। अब क्या होगा, पति को जगा नहीं सकते, सूर्यास्त नहीं होना चाहिए और जल दे दें, जाके एक टीले पर खड़ी होकर सामने सूर्यनारायण को देखा, प्रभो जब तक पति जो उठे ना आपको अर्घ न दे तब तक आपको यहीं रुकना होगा। हाँ, किसी एक इंसान को बस में नहीं कर सकते, अपनी श्रीमती को बस में नहीं कर पाए, क्या जानू। सूर्य को रोक दिया, सूर्य रुक गए, महाराज उठे घबराए से, समय ज्यादा हो, स्नान किया संध्या करके, सूर्यार्घ देते ही अंधेला छा गया। समझ में आ रहा, मेकअप करना होता है ना, ट्रेन अगर कहीं लेट हो गई है तो फिर उसको रफ्तार बढ़ानी पड़ती है कि उस समय से वहां पहुंच जाए। समझ में आ रहा, तो एकदम अंधेला हो गया। तो पांडु ने कहा माद्री सूर्यास्त के बाद क्रमशः अंधकार आता है धीरे 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 धीरे, और अभी तो मैंने सूर्य को जल दिया ही और एकदम अंधेला छा गया, ये हुआ क्या। महाराज आपका व्रत खंडित न हो इसलिए मैंने सूर्य को रोका हुआ। ये महाभारत में साफ लिखा है। ये पातिव्रत था उनका ना, सूर्य को रोक दिया। सांडली के पति को, सांडली के पति को मांडव ऋषि ने श्राप दिया, सूर्योदय होते तेरे पति के प्राण निकल जाएंगे। कथा पहले सुनी है कि नहीं? नहीं सुनी, सुना दें। अच्छा, सांडली नाम की माता अनुसुईया की शिष्या है, विवाह हुआ, विवाह के बाद ही पति को कोढ़ निकलना शुरू हुआ, पूरा शरीर कोढ़ से भर गया, पस भी निकलती है, पानी पानी, खुजली पूरा शरीर, और ऐसे पति की वो सेवा करती है। जैसे गोद के बच्चे को मां संभालती है, तरह वो अपने पति को संभाले हुए, रुई लग करके, ये लगा करके, किसी तरह पति को कष्ट ना हो, हर इच्छा पूर्ण कर। ये काम ऐसा शत्रु है, कब कहां जाग उठे, कहां नहीं जाग। ये कभी अभिमान नहीं कर बैठना कि हमारा काम बस में है, हमारे भूल से भी ऐसा नहीं कर। प्रबल शत्रु है, ऋषियों की उग्र तपसान, वाल्मीकि रामायण, उग्र तपसान, कठिन से कठिन तप करने वाले ऋषि, कठिन से कठिन नियम पालने वाले ऋषि, क्या उत्सर्ज नियमान काम भ्रश्यंते काम मन्वे। ये काम जागृत होता है और उनके नियम टूट जाते हैं और फिर जाते हैं। काम को हमने जीत लिया, काम हमारे वश में है, अगर ऐसा सोच के तुम आगे बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं गिर जाओगे, निश्चित गिरोगे। सांडिल्य की पत्नी, अब आजकल क्या सुना है इस समय, पति प्राण, जो पतिव्रता स्त्री होती है उसका नाम होता है पति प्राण, का मतलब अपने प्राण पति में है, जो पति कहेंगे वही करना, दूसरा नहीं करना, वो पतिव्रता पतिपुराण कहलाती। दरवाजे पर बैठे थे, पत्नी सेवा में लगी है, सुंदरी वेश्या निकली, मन बेचैन हो गया। हमने कहा ना कि काम बड़ा शत्रु है, अब रात में लेटे तो हैं लेकिन नींद नहीं आ रही, करवटें बदल रहे हैं। पत्नी ने कहा प्राणनाथ, पति को प्राणनाथ भी कहा जाता, सीता जी भी यही कहती, प्राणनाथ मौका जग माही तुम तजे कतम सुख नाही, मैंने मेरे प्राणों के स्वामी आप हो, सिर्फ प्राणनाथ कहता हूं। आपको निद्रा नहीं आ रही, क्या कारण, कोई कष्ट हो मुझे बताइए, क्या बताऊं देवी, बताने वाली बात नहीं है। जब आप मेरे पति के, मेरे प्राण के स्वामी हो तो मुझसे छुपाने क्या, मेरा पापी मन वेश्या पर अटक गया, आजकल की श्रीमती चप्पल उठा लेती क्या, नहीं बोलो भाई, हम इतनी सेवा कर रहे हैं रात दिन, काम सुख तो यहां भी नहीं है इसे, और तो उसको वो कहती है मैं जा रही हूं, कोशिश करूंगी वो प्रसन्न हो जाए आपके लिए, तोवा तोवा, आज के युग में संभव है। गई वहां और उसके दरवाजे में आंगन में झाड़ू पोछा करती है। अच्छा, वो वेश्या जानती थी कि महान पतिव्रता, जब सुबह उठ के देखा पोछा था, ये महान पतिव्रता मेरे यहां, वेश्या का घर जो है वो तो बहुत अपवित्र माना जाता है ना भाई, कितने पुरुष आते जाते हैं, और ये पोछा लगा रही है, झाड़ू लगा रही है, इसका मतलब ये दुखी है, पति इसके कोड़ी हैं, कमाते नहीं, हो सकता है कुछ मांगने आई हो। आगे बढ़ी, आप क्या कर रही हैं मेरे, आज मेरा मकान पवित्र हो गया, मेरा घर पवित्र, मेरा जीवन। पतिव्रता का दर्शन करने से, जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, पतिव्रता के दर्शन हो जाए तो सारा जीवन पवित्र हो जाया करता है। ये यहाँ लिखा है शिव पुराण, यथा गंगाव गाहेन शरीरम पावनम भवेत तथा पतिव्रताम दृष्ट्वा सर्वम पावनम भवेत। एक ही पति, दूसरा नहीं, और फिर उनकी सेवा। आजकल तो पति अगर दो सुनाए तो जब तक चार ना सुना दें उसको, तब तक श्रीमती टेंशन ही रहेगी बीमार, क्या समझे। यहां लिखा है कि पति कड़वा भी बोल दे तो जवाब नहीं देना हो। बाद में प्यार से कहा जा सकता ऐसा नहीं, ऐसा था। शास्त्रों के आधार पर जीवन बिताओ, देखो फिर जीवन कैसा बनता है। उसने झोली फैला दी, मेरे पति की पत्नी बन जाओ सदा के लिए। उसने कहा मेरे यहां बड़े बड़े राजाओं के बेटे आते हैं, जमींदारों जगीदारों के, जब वो सुनेंगे कि ये कोड़ी को पति बना बैठी है तो आना बंद कर देंगे। पर मैंने वचन दिया है कि जो मांगोगे मैं दूंगी, तो एक रात के लिए मैं उनकी पत्नी बन सकती हूं। बड़ी खुश, बड़ी खुश दौड़ती हुई घर गई। प्राणनाथ, एक रात्रि के लिए वो आपकी पत्नी बनने को थे। ओ सांडिल की होती, लेकिन देवी मैं चल नहीं सकता, शरीर कुष्ट है। बोले कोई बात नहीं, मेरी पीठ पर लदो, जैसे कुंटल लादा जाता ना, पीठ पर लदो और मैं आपको अंदर भेज दूंगी, बाहर बैठी रहूंगी और सुबह आपको लेकर के। ध्यान से सुन रहे, सुन तो लो, करना तो अलग बात है, तो दूर की बात है। पीठ पर लाद के पति को ले जा रही है, बेशक है। सुनो और विचार करो, आज के युग में कुछ हो नहीं पा रहा और इसीलिए आज लोग इतने दुखी हैं, देवियां भी अशांत हैं, टेंशन में हैं। अब पतियों की हत्या भी हो रही है आजकल, तो कईयों का मिलता पति को, पर से प्यार किया इसको मार दिया। जेल में हमारी कथा हुई, घंटे घर के ले गए थे, और जेलर बड़े प्रभावित हुए थे, बोले एक दो जगह कथा करनी पड़ी जेल में। देखा तो स्त्रियां भी बैठी थी, पुरुष बहुत थे। हमने पूछा उनसे जी कि ये किस अपराध से, बोले पतियों को मार के आई है। भेद खुल गया ना, जेल में पड़ी हो। ये वासना इतनी भयानक है, ये जानते हुए इसके द्वारा बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, फिर भी विचार नहीं आया। पति को लिए पीठ पर, रात का समय जा रहे, मांडव ऋषि सूली पर टंगे हुए थे, चोरी की दूसरों ने इनकी कुटिया के पास रख दिया, उस अपराध में ये पकड़े गए, समझ में आ रहा है ना। और सूली गोदा मार्ग से सूली डालते ऊपर निकाल देते, लटका रहते। मांडव ऋषि, उन्होंने फिर श्राप दिया यमराज को, तुमको शूद्र बनना, विदुर बन के आए थे। मांडव ऋषि ने यमराज को श्राप दिया कि तुमको मनुष्य बनना। विदुर जो है ये यमराज के अवतार माने जाते हैं अपने, महाराज स्थिति ये बनी कि जब जा रहे हैं ना अंधेला था ना, सूली में ठोकर लगी, जैसे लोहे का है ना उसमें पटांगे, ठोकर लगी, ज्यादा तकलीफ हुई। मांडव ऋषि क्रोध में भर गए, दुष्टा पति के प्यार में इतनी पागल हो रही है, तो तुझे ये नहीं देखा कि तूने मुझे कष्ट पहुंचाया, मैं श्राप देता हूं सूर्योदय होते तेरे पति के प्राण निकल जाए। हे महात्मा, किसे श्राप दे रहे हो? मैं पतिव्रता हूं, तुमने श्राप दिया सूर्य निकलते प्राण निकल जाएंगे। मैं कहती हूं जब तक मैं नहीं चाहूंगी सूर्य निकलेगा नहीं, देखें कैसे सूर्य निकलता। सात दिन बीत गए हैं सूर्य नहीं निकले, क्या हाहाकार मच गई संसार में, देवता तक घबरा गए, सूर्य नहीं निकलेंगे संसार खत्म हो जाएगा। मिलके पहुंचे हो, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से, उसने कहा कि वो पतिव्रता है अनसुईया को बहुत मानती है, उनको ले जाओ प्रार्थना कर। गए ले आए अनसुईया, बेटी हाथ हटाओ सूर्य निकलेंगे, मेरे पति का प्राण निकल जाएंगे। तो पति के प्राण बचाओगे तो लाखों करोड़ों के प्राण चले जाएंगे, समझ में आ रहा? सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुखश्चो, वेद में लिखा है कि सूर्य जो है ये सबकी आत्मा है। सूर्य जो आत्मा है उनसे ही हमारी मशीन बैटरी चार्ज होती है। कभी सोचा नहीं आपने, रात भर का जगा हुआ व्यक्ति दिन भर नहीं सो सकता, दो घंटे सो लेगा तीन घंटे बस ठीक है, पर दिन भर का जगा हुआ व्यक्ति रात भर आराम से सोता है, ऐसा क्यों? उसका कारण यह है कि दिन में सूर्य की किरणों से तुम्हारी बैटरी अंदर की चार्ज होती है, निद्रा कम आती है, और रात में डिस्कनेक्ट हो गए सूर्य से नहीं तो मुर्दे की तरह पड़े रह जाओ। सूर्य आत्मा है सारे संसार की, हाथ हटाओ। जब तुम सूर्य को रोक सकती हो तो पति के प्राण भी तो रोक सकती हो, जैसे हाथ हटाया सूर्य निकले प्राण निकल गए, एकदम क्रोध भरे। अनुसुईया माता ने नहीं क्रोध नहीं कर, मैं प्रार्थना करती हूं हे परमात्मा, आपने धर्म धर्म का जो निर्माण है वो किसी ऋषि महात्मा से नहीं हुआ, किसी व्यक्ति से नहीं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म का निर्माण भगवान के द्वारा हुआ है। क्या करना है और क्या नहीं करना है ये जो निर्णय शास्त्रों में लिखा है ये किसी ऋषि का लिखा हुआ नहीं है, ये तो भगवान का सीधा आदेश है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, न देवता जानते हैं न ऋषि जानते हैं, इसीलिए शास्त्र कहते हैं जो शास्त्र में लिखा है उसको मान लो तुम्हारा कल्याण हो जाए। प्रार्थना की, अगर इसने नियम का पालन किया धर्म का, पति के प्राण नहीं जाना चाहिए, सत्य के आधार पर नया जीवन मिले। महाराज उसी समय पति उठ के बैठ गए, कोढ़ बिल्कुल समाप्त हो गया, नौजवान स्वरूप में ऐसे कामदेव की तरह प्रकट हुए कि देवता भी पुष्प वर्षा कर बाजे बजाने।
सांचे दरबार की
ये है तुम्हारा धर्म, वेद प्रणहितो धर्म ह्य धर्मस्तद विपर्ययः, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, तुम्हारे लिए अंतिम प्रमाण
शास्त्र।
शास्त्र ब्राह्मणी शिक्षा दे रही है इन माताओं की नकल करना है तो उनकी करना, ये नाचने गाने वालियों की नकल नहीं करनी है तुम्हें, उनकी नकल करनी। कैसी कैसी हुई है अहिल्या ने, माता अरुंधति आज भी वशिष्ठ की पत्नी बनके आकाश में है, मृत्यु आने वाली है, एक महीना दो महीने पहले से तारा दिखेगा नहीं। क्या वैसे दिखता है हमेशा? सात ऋषि हैं, सप्त ऋषि ऊपर मंडल, चार तो खाट के चार पाए की तरह हैं और तीन ऐसे हैं, समझ में आ रहा है? तो चौथे वशिष्ठ जी हैं, उनकी पत्नी अरुंधति है, वो तब तक दिखेगी जब तक मृत्यु नहीं आएगा, मृत्यु आ रही है दिखना बंद हो जाएगा। कैसे कैसे त्याग किए है ना, तप किया है, अपने आप को पति के प्यार की अग्नि में अपने स्वार्थ की सामग्री को हवन कर दिया। हमें कुछ नहीं चाहिए, जो हमारे पति के द्वारा होगा वही हम करेंगे अपना नहीं। और आज तो यह है कि जो हम कहेंगे वो होगा, तुम्हारी बात का कोई प्रमाण नहीं। शांडिल्य, पति के यहां जाकर धर्म का निर्वाह करना है, पति की सेवा करनी है, पति को सुला के सोना है, पति को खिला के खाना है। सुन रहे हो ध्यान से? पति को खिला के खाना है, पति को सुला के
सोना,
पति के जागने से पहले जागना, सोना बाद में,
जागना पहले,
जागना पहले। घर की सफाई रखनी है, जो वस्तुएं जहां रखनी चाहिए सेठ, स्वयं मंडित मंडिता, और पति जीवित हैं तो सिंदूर, हल्दी, चूड़ियां, पैर में अंगूठी में जो पहनी जाती है, क्या कह जाते हैं वो सब, ये सब मांगलिक चीजें हैं, इसे पति की आयु बढ़ती है, इनको हमेशा धारण करना। तीन दिन पति का मुख नहीं देखना, अपना मुख नहीं दिखाना। चौथे दिन सुबह बाल धोकर जब निकले तो सीधे पति के पास जाके प्रणाम कर। उस महीने में अगर गर्भ होता रह जाता है तो पति और पति से भी सुंदर पुत्र प्राप्त हो जाता है। अगर पति नहीं है, बाहर गए हैं, तो सीधे नेत्र नीचे करके बाहर निकलो, सूर्य भगवान का दर्शन कर लेना। सूर्य सबकी आत्मा है, बताया ना उन्होंने। क्या पति कड़वा भी जवाब दे बोले तो भी जवाब नहीं देना। पति की सेवा करनी है, पति के जो माता पिता भाई बंधु हैं उनकी भी सेवा करनी है। पति के दुख में दुखी होना है, ऐसी कोई बात नहीं करनी है कि पति को सुनकर दुख हो जाए, टेंशन में आ जाए। अगर घर में कोई वस्तु नहीं भी है तो एकदम नहीं कहना कि चीज नहीं लेके आओ। अभी हम पहले सुना चुके हैं ना कि एक श्रीमती ने पति से कहा कि वो जेवर लेते आना सुनार के यहां से, बड़ा हुआ दुकान में ग्राहक ज्यादा आए, यहां तक कि वो टिफिन भी नहीं खोल पाए खाने के लिए, नोट भी ज्यादा मिले, सुनार क्या जाना भूल गए। घर पहुंचे, देवी आज तो भोजन भी नहीं कर पाया, बहुत ग्राहक है, वो ले आए सोनार कहां से? नहीं, अरे हो गया, लेके आओ। अब बताओ। अच्छा, और एक हफ्ते बाद बेटे का नंबर आया, काका ये लेते आना, पंजाबी में काका कहते हैं, वो लेते हैं, वो भी भूल गए, समझो जरा। आया बेटा, ले आए वो, अरे मम्मी तो भूल गया, मैं अभी लेकर, नहीं कोई गल नहीं, कर ले आना। बोलो वृंदावन
हरिलाल की जय।
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आज ये स्थिति चल रही है। अवस्था ढलने के बाद पति ज्यादातर नौकर की तरह घर में गुजारा कर रहा होता है। पति और पुत्रों का साम्राज्य घर में है, जो वो कहेगी वही होगा, दूसरा का नहीं कर सकता। पति जो कहेगी उसमें तो ज्यादातर ना ही करना होता है, और अपने को बड़ी भक्त नहीं कहते हैं, अपने को बड़े कहते हैं। हमें बहुत भजन किया, लाभ लाभ खाक होगा तुमको, जो तुम्हारा कर्तव्य है उस पर को तुम भूल चुके हो ना। बहुत सारी बातें यहां लिखी हुई हैं, विधेर विष्णु और हरोद हराद वापी, क्या पतिरेको अधिकम मतः, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी पति श्रेष्ठ है बेटी, यह ध्यान रखना। पति से छुपके मिठाई खाएगी तो सुवर्णी बनती है, पति से आंख बचा के दूसरों से आंख मिलाती है तो टेढ़ी आंख वाली हो जाती है, गूंगी हो जाती है, सुवर्णी हो जाती है। उल्लू की का मतलब उल्लू की पत्नी, जो कड़वा बोलती है पति से, जो दूसरों से, पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा हो
पाए तरुणाई,
पाए तरुणाई। पर पति से प्यार करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में जवानी में विधवा होती है। अब यहां लिखा है जो हम सुना रहे हैं, अपने मन से हम कुछ नहीं कह रहे, कोई बाहर की बात है। रामायण में लिखा पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई,
विधवा
होए
पाए तरणाई,
पाए तरण
पति वंचक पर पति।
चार प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। पोतम के अस बस मन माही,
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 सपने आन पुरुष जगनाही,
सपने आन पुरुष जगनाही,
मध्यम पर पति देखें कैसे,
मध्यम पर पति देखें कैसे,
दाता पिता पुत्र निज जैसे,
दाता पिता पुत्र निज जैसे,
धर्म विचार समुझ फुल रहे,
धर्म विचार समुझ फुल रहे,
सोन कृष्ण प्रिय छिपी अस कहे,
सोन कृष्ण प्रिय छिपी अस कहे,
क्या बिन अवसर भाए ते रह जो, समझते हमको खोटी, एक क्षणिक सुख के लिए सैकड़ों करोड़ों वर्षों तक उसको दुख उठाना पड़ेगा। शास्त्र कह रहे हैं, एक स्त्री कह रही है पर पुरुष से प्यार कर, मेरे पति को पता न लगे नहीं मेरा सिर काट लेंगे। देखो सिर काट लेंगे यहां तक तो उसको भय है, लेकिन फिर भी गलत काम से पीछे नहीं मुड़ रही। काम एक सा भयानक है, शत्रु है। अगर सृष्टि में काम न होता तो सबके सब प्रहलाद ध्रुव और मीरा गोपियों की तरह हो जाते। इसी ने गिरा दिया। कंचन और कामनी इनकी समस्या है। उत्तम पतिव्रता है जिसको स्वप्न में भी पर पुरुष का ध्यान नहीं है। मध्यम वो है जो दूसरे के पुरुष को पिता भाई पुत्र की तरह देखते हैं। तीसरी वो है गलत की छत होती है लेकिन मेरा धर्म नष्ट ना हो जाए इसलिए बची रहती है। चौथी वो है जिनको संयुक्त परिवार में समय नहीं मिलता इसलिए आजकल इंडिपेंड रहना चाहती हैं स्त्रियां। बुरा तो लग जाएगा सुनने में, सभी गलत नहीं है लेकिन ज्यादातर यही स्थिति होती है। संयुक्त परिवार में गलती से बचाव होता है। सास है, ससुर है, ननद है, देवर है, भाई है, बहन है, तो गलत काम करने का समय करें
जी।
और अकेले रहेंगे तो पति देवता अपने काम से गए स्वतंत्र हैं तो गलत काम हो जाएगा कि नहीं होगा। इसलिए पहले संयुक्त परिवार की परंपरा अपने यहां थी। अभी एक दिन अखबार में या टीवी में देखा, एक परिवार में 180 सदस्य हैं, एक ही परिवार में
180
सदस्य, और सब एक जगह रोटी बनती है, अब एक जगह रहते हैं। अब ऐसे बीच में रहकर के गलत काम हो सकेगा? तो संयुक्त परिवार की बहुत महिमा है शास्त्रों में। सास ससुर की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, आए गए का सत्कार करना, नारी का धर्म है। यहां तो लिखा हुआ है, धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषता। गोपियों के लिए कहा गया धन्या ब्रज स्त्रिया, ब्रज की स्त्रियां
धन्य है,
लेकिन पतिव्रता के लिए उसी शब्द का प्रयोग है। इसका मतलब कि चाहे वो कर लो ये कर लो, जो फल उनको मिला है वही इनको मिल जाएगा। धन्या ब्रज स्त्रिय कहा गया ना, और यहां शिव पुराण में क्या लिखा है, धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषता। अगर उसने पतिव्रत का पालन कर लिया है तो धन्याति धन्य हो गई है। एक स्त्री 9 पीढ़ियों को स्वर्ग ले जा सकती है, 9 को नरक ले जा सकती है, यहां लिखा हुआ है। मातृवंश पितृवंश पतिवंश स्त्रयस्त्रया उद्धरेत सकलम नारी। पिता की 3 पीढ़ियां, ससुर की 3 पीढ़ियां, पिता की 3 पीढ़ियां हुई ना, माता की भी 3 पीढ़ी और पति की 3 पीढ़ी, कितने हो गए? 3 पीढ़ियां पिता की और 3 पीढ़ियां और 3 पीढ़ियां पति, पतिवंश मातृवंश पितृवंश पतिवंश त्रयस्थ उद्धरे सकलम नारी। नारी सबका उद्धार कर सकती, नारियों के लिए भजन बहुत ज्यादा नहीं बताया शास्त्रों ने, यही भजन है कि तुम अपने परिवार में अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करो, कैसे रहो। भजन भजन तो मुख से करना है, घर में बैठे भी कर सकते हो, उसमें क्या समस्या है? नहीं समझ में आ रही बात, मन का किया हुआ असर डालता है ना। तो मन तो स्वतंत्र है, घर का काम करते भी हम प्रभु का स्मरण, गोपियां आकर घर का काम करती हुई भगवान से प्यार करती है ना, नहीं काम छोड़ दिया, इसलिए उनको धन्या ब्रजस्त्री कहा गया। जो नारी धर्म का पालन कर लेती है उसको और कुछ करने की विशेष जरूरत भी नहीं पड़ती है। अस्तु, और बहुत कुछ लिखा है, आगे बढ़े क्योंकि समय थोड़ा और प्रश्न। वंदना सुनाएगी क्या? अच्छा सुना दी।
बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव शिव भोले, शिव शिव भोले, नाथ अरज सुन मेरी। शिव शिव भोले, नाथ अरज सुन मेरी। शिव शिव
I'm not afraid.
विदाई का समय आया है, एकदम प्राकृत कन्या की तरह पार्वती अम्बा रोई हैं, माता मैना के गले लगकर रोती हैं। मैना बड़ा भाई है, भाभी है, सबके गले लग के रोती, भैया से कहती भैया हमें भोला नहीं देना, माता पिता से रो रो कहती हैं हमें भूल नहीं जाना। लिखा है कि इतनी करुणा छा गई उस समय वहां कि औरों की बात तो अलग है, भगवान शंकर के भी आंसू निकल आए थे। बेटी की विदाई का जो समय होता है ऐसा करुणापूर्ण होता है, पत्थर भी पिघल जाते हैं, भगवान शंकर के भी नेत्रों जल हुआ। देखो बेटी की विदाई कितनी दुखद होती है, पाल के पढ़ा के बड़ी बना के फिर किसी को देना। अरे तुम एक गमला भी लगाओ घर में और उसमें फूल निकले और कोई दूसरे को देना पड़े तो तकलीफ होती है कि नहीं होती? फिर जवान बेटी, इसके बाद बारात चली है, लोग भेजने गए हैं, भगवान शंकर ने सबको फिर बात किया है, पालकी में पार्वती अम्बा है, कैलाश पहुंचे हैं, जो बाराती देवता थे सबको बढ़िया सुंदर भोजन, उनके बाद दक्षिणा जो बारात में आए हुए थे सबको यथावश्यकता। भगवान शंकर ने कहा प्रिय तुम्हें स्मरण तो होगा कि नहीं है, तुम पहले सती थी दक्ष की पुत्री और बात नहीं मानी और राम की परीक्षा ली तुमने, इसलिए तुम्हें शरीर छोड़ना पड़ा। पार्वती अम्बा ने कहा भोलेनाथ इस बात का स्मरण इस समय न कराया जाए अच्छा है, नहीं कहते सुख का समय है ना तो दुख की घटना। भाई राम नाम तो सत्य है, पर किसी की बारात जा रही हो दूल्हा चेहरा बांध के और कहो राम नाम सत्य है तो नीक्यू फीकी लगे बिन अवसर की बात, कौन बात कहां ठीक लगती है इसका ध्यान रखना होता है। क्या इसका स्मरण नहीं कर रहा, ये मुझे सब याद है पर अब वो स्थिति मेरी नहीं है जो उस समय थी। कुमार संभव में कवि कालिदास जी ने बहुत लिखा, बिहार का वर्णन किया, समग्र देवता मिलकर आए हैं, प्रभो विवाह का उद्देश्य है पुत्र की प्राप्ति, आपके पुत्र से ही तारकासुर का वध हो पाएगा, ये आप कृपा करें संतान उत्पन्न हो। दिव्य देवियां गर्भ धारण नहीं करती हैं, राधा के संतान नहीं है, लक्ष्मी के नहीं है, सरस्वती के नहीं है, पार्वती के नहीं, इनके जो संतान होती है वो संकल्प मात्र से हो जाती है। तो भगवान शंकर भोलेनाथ का शुक्र स्खलित हुआ है और उसे क्रमशः आग में अंत में गंगा में डाल दिया गया है, गंगा की लहर ने उछाल मारी तो सरकंडों में जाकर धातु गिरी हुई है, वहीं कार्तिकेय भगवान प्रकट हो जाते हैं। दिव्य सौंदर्य है, माधुर्य है, विलक्षणता है, कृतिका नक्षत्र ऊपर है, 27 नक्षत्र ज्योतिष में चलते हैं, कृतिका नक्षत्र उसमें 6 तारे हैं, 6 देवियां हैं, कृतिका नक्षत्र कहलाते, वे गंगा स्नान करने आई थी, वहां से भी गंगा नहाने आते हैं। देव धनुज हरि मनुज शरीर, देवता धनुज मानुष मनुष्य शरीर धारण करके गंगा में गोतल लगा, इसलिए कीमत करो, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें गंगा के गोद में बैठने को मिला हुआ है, गंगा स्नान यथा संभव करते रहना चाहिए। क्या समझे आप? गंग माने स्वर्ग, और फिर दूसरा गा है स्वर्गम गमयतीत गंगा, जो सीधे स्वर्ग भेज दे, वैकुंठ भेज दे, उसका नाम गंग स्वर्गम गमयतीत गंगा। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, मां आपके किनारे बैठा आपकी तरंगों को देखता हुआ मेरा शरीर छूटे ये मेरा सौभाग्य होगा। आपके किनारे जो पेड़ लगे हैं मैं पक्षी बनूं तो उन्हें मेरा घोंसला बने, अंत में आप में ही रहूं। मैं आपके जल में कछुआ बन जाऊं, मछली बन जाऊं, कैकड़े क्या क्या जानवरों का कल्याण करना। ऐसा समय कब आएगा मां, मैं आपके किनारे मेरा शरीर छूटे और आपकी तरंगों में मेरा शरीर तरंगाई थोड़ा हो और मैं विमान पर बैठा हुआ देखूं कि इस शरीर से मैंने गंगा का पूजन सेवन किया कि आज मां गंगा मुझे सीधे वैकुंठ ले जा रहे हैं। जानवर खा रहे हो मेरी लाश को, क्या समझ? काकई निष्कृतम, बड़ी सुंदर बातें शास्त्रों में लिखी हैं। गोजमायु फिर लुंडितम स्रोतो भी चलितम तदाव में लुंडितम, क्या गीदड़ खा रहे हो, कुत्ते खा रहे हो मेरी लाश को और मैं विमान पर बैठा पर जा रहा हूं। महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता, जो रामावतार से पहले रामायण लिखते हैं, वो मां गंगा की प्रार्थना करते हैं। गंगा पवित्र स्वर्ग से देवियां गंगा नहाने आई हैं। छह, और जब निकली तो सरकंडों से लाइट नजर आई। तो सरकंडों में लाइट कैसे गई? कार्त के भगवान किलकारी मार रहे खेल रहे, छेऊ ने उठा लिया, मैं पिलाऊंगी, वो कहती मैं पिलाऊंगी, वो कहती मैं पिलाऊंगी। कार्त के भगवान ने अपने छह मुख बना लिए, इसलिए इनका नाम सदानंद भी है। कार्तिकेय का नाम आनंद आने मुख होता है ना, सदानंद छह मुख, छेव का दूध पीते ले गई हूं पवन। जैसे नंद बाबा के यहां भगवान कृष्ण का पालन पोषण हुआ, इसी तरह छेव कर देवियों के द्वारा कार्तिकेय का पालन पोषण हुआ। देवर्षि नारद पहुंच गए, देवियों ये तो शिव कुमार हैं, ये पार्वती नंदन है, तारकासुर को मारने के लिए इनका अवतार हुआ है, क्योंकि तारकासुर ने वर मांगा हुआ था शंकर के शुक्र से उत्पन्न पुत्र से मेरी मृत्यु हो, दूसरे कोई मारे नहीं सकते। युद्ध में भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, शस्त्र छोड़ा, गदा छोड़ी है, उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया था शस्त्रों। ब्रह्मा से वर प्राप्त है ना, शंकर पुत्र से ही मृत्यु है, दूसरे से हो ही नहीं सकती। छह की छह देवियां रोने लगी, बहुत रोई। हमें मालूम होता कि उनके हैं तो हम इतना प्यार न करते, इतनी सेवा न करते। प्यार करना सौखा है, मन मोड़ना औखा है, पंजाबी में कहते हैं नहीं कहते। प्यार कर लेना तो सरल है, लेकिन फिर मन को मोड़ लेना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। छह की छह देवियां कार्तिकेय जी को लेकर के माता पार्वती गोद कैलाश में आई हैं। माता की गोद में रखते रखते छह की छह रो पड़ी जोर से। माता पार्वती ने सांत्वना दी, रो नहीं, मां हमें क्या मिलेगा, हम हमने इतनी सेवा की, इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ किया, इसके बदले हमें क्या मिले? तुम कृतिकाओ हो ना, तो तुम्हारे नाम से इनका नाम रख देती हूं कार्तिकेय। समझ में आ रहा है? नहीं आया? कृतिकाओं के नाम से कार्तिक की पूर्णिमा को प्रकट हुए, इसलिए भी नाम उनका कार्तिकेय है। कृतिका नक्षत्र से पूर्णमासी अगर संयुक्त मिले तो हमारे उस तरफ तो निर्जला व्रत करती हैं देवी, बहुत महत्व है। अस्तु, बहुत सांत्वना, बहुत प्यार देके माता ने उनको विदा किया है। कुछ दिनों के बाद देवता मिलकर आए हैं, प्रभो इनके द्वारा ही तारकासुर की मृत्यु हो सकती है, इसलिए हम इनको सेनापति बनाकर ले जाना चाहेंगे, अनुमति आपकी हो। भगवान शंकर ने कहा ले जाओ, परोपकार के लिए जो अपना जीवन लग जाए, अपना पदार्थ लग जाए, वो धन्य धन्य हो जाया करता है। यद्यपि अभी थोड़े दिन पहले आए हैं, इतना प्यार, प्रथम पुत्र, लेकिन तारकासुर से युद्ध करना है, इनके द्वारा मृत्यु है, दे दिया। मही संगम सागर के किनारे युद्ध स्थल बनाया गया है। तारकासुर भी विशाल सेना लेके आया, वो ऐसा था मायावी कि हजारों भुजाएं बना लेते थे, और युद्ध में से कोई जीत सका ही नहीं। त्रैलोक पर उसने विजय प्राप्त कर रखी है, अजर अमर है वो, तो शिव पुत्र से ही मारा जाएगा। आज कार्तिकेय सेनापति पद, देवराज इंद्र ने अपने गजराज हाथी पर बैठा लिए कार्तिकेय, अब विशाल सेना चली हुई है, विविध प्रकार के वाहन रथ शास्त्र। थोड़ी दूर चल के कार्तिकेय रथ से उतर के एक दिव्य विमान में बैठ गए। युद्ध प्रारंभ हुआ है, वीरभद्र और तारकासुर का युद्ध चला है, बहुत भयानक युद्ध हुआ है, और अंत में वीरभद्र को संकेत मिला कि तुम्हारे द्वारा ही मर नहीं सकता, भगवान विष्णु से युद्ध हुआ भयानक। भगवान विष्णु को तो मालूम था ही कि ब्रह्मा का दिया भर है, तो कार्तिकेय से समाप्त, वो भी पीछे हट गए। कार्तिकेय आए हैं, जब देखा उसने कार्तिकेय को, यही कार्तिकेय मेरी मौत है ये, अरे छोकरा मुझे क्या मारे, मैं इसको आज मौत के घाट उतार दूंगा, मैं तेरी प्रतीक्षा ही कर रहा था, देखा ही रहा था, आज तुझे मैं यमराज क्या भेज दूंगा। कार्तिकेय ने कहा कौन जाता है यमराज क्या है, तो युद्ध से पता लग जाएगा। युद्ध चला है, भयानक युद्ध का वर्णन है, समय थोड़ा है इसी तरह, और अंत में कार्तिकेय जी ने शक्ति भगवान शंकर के द्वारा प्राप्त थी, पैदल ही चले और छोड़ दिया, और जलती हुई आग जैसी उगलती हुई गई, छाती में लगी, छे टुकड़े टुकड़े हो गए, देवता पुष्प वर्षाए।
कार्तिकेय भगवान की,
कार्तिकेय भगवान का चरित्र पढ़ते सुनते रहो, शत्रुओं पर सदा विजय प्राप्त होगी, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए आप कह सकते हो हमारे तो कोई शत्रु नहीं है, छह शत्रु हैं ही आपके तो, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, कितने हो गए?
छह।
हाँ, तो सदानंद कार्तिकेय की आराधना करने से इन शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होती है। हिमालय उनके नाना हैं और पर्वतों के साथ आए हैं, तो कार्तिकेय जी ने कहा नाना जी गंगा आपके अंदर से बाहर आ रही है, तो गंगा जी के जल का स्पर्श करके आप परम पवित्र हो चुके हैं, आपके पास बड़े बड़े ऋषि आपके यहाँ रहेंगे, तप करेंगे, भजन करेंगे, आपका जीवन सफल। भगवान शंकर अम्बा पार्वती ने गले लगाया है, हाथ सिर पर हाथ फेरा है, चूम लिया है, कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध हुआ, प्रसन्नता से सब भर जाते हैं। कैलाश में बहुत खुशियां मनाई जाती हैं तारकासुर के वध और कार्तिकेय के द्वारा विजय प्राप्ति पर। बोलिए शंकर भगवान की
जय।
इसके बाद गणपति भगवान का प्रादुर्भाव आपको सुना देते हैं। एक दिन जया और विजया जो पार्वती अम्बा की सहेलियां हैं, उन्होंने कहा मां भगवान शंकर के तो बहुत सारे गण हैं, करोड़ों की संख्या में, लेकिन हमारा व्यक्तिगत कोई गण नहीं है। बड़े घरों में हर चीज व्यक्तिगत होती है, ये उनकी कार है, ये उनकी है, ये उनका कमरा है, ये उनका है। भोलेनाथ के करोड़ों और अम्बा पार्वती के भी नहीं। जया विजया ने कहा कि उनको हम यहां खड़े करते हैं, पीछे से बुलावा आता हो भाग जाते हैं, वो कहते हैं हम तो उनके हैं। तो मां अपना भी कोई व्यक्तिगत गण होना चाहिए। अम्बा पार्वती ने कहा हां बहनों ठीक कह रही हो, व्यक्तिगत होना चाहिए। एक बार मैंने अमुक गण को खड़ा किया, मैं स्नान करने चली गई और पीछे से भोलेनाथ आए, रास्ता दे दिया उसने, और उस समय मैं गुसल खाने वो भी वहीं पहुंच गए। मुझे बड़ी लज्जा लगी देख करके और निश्चित किया कि मैं अपना गण बनाऊंगी, लेकिन मैं ऐसा गण बनाऊंगी जो गणों का अध्यक्ष होगा, गणाध्यक्ष सर्वाध्यक्ष पद प्राप्त करेगा, उसको हम बनाते। उन्होंने उबटन लगाया अपने शरीर में, उबटन समझते हो क्या? नहीं, आजकल तो साबुन लगा लेते हैं ना, पहले बेसन का उबटन लगाते थे, चमेली का तेल, केसर, हल्दी और बेसन इसका बनाते हैं। अभी भी गणेश भगवान को जब तेल चढ़ाना हो तो ये ध्यान रखना हो। गणपति भगवान का पूजन करते रहो, जीवन मंगल में हो जाएगा, आने वाली विपत्तियां टलती जाएंगी, समझ लो। यहां तक कि भगवान शंकर भी गणेश पूजन भूल गए और तारकाक्ष कमलाक्ष विद्युन वाली को मारने गए हैं, और जब धनुष पर बाण रखा तो अंगूठे में दर्द हो गया था। ऐसा दर्द हुआ कि वो बाण चढ़ा छोड़ नहीं पाए। आकाशवाणी हुई, आपने गणेश पूजन न करके युद्ध प्रारंभ किया, इसलिए हो गया। फिर तो भद्रकाली को बुला के पूजन कराया, पूजन कराते ही दर्द समाप्त हो। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, नर नारी को गणेश पूजन करना जरूरी है। गणेश के 12 नाम है, सुमकशैक दंतश्च
कपिलोगज कर्णिका,
कर्ण कहा लंबोदरश्च विप्रो विघ्ननाशो
विनायिका
धूम्रकेतुर
गणाध्यक्षो
भालचंद्रो
गजानन
द्वादशी तानि नामानि 12 नाम, 21 नाम भी हैं, 108 भी हैं और 1000 नाम भी हैं गणेश। 12 नाम, कहीं भी जाना है स्मरण करो, आना है स्मरण करो, अपने दरवाजे पर गणेश जी की प्रतिमा लगा दो ताकि जाते आते, समझ में आ रहा है नहीं? गणेश गणाध्यक्ष और सर्वाध्यक्ष दोनों बनते हैं। अभी 5 मिनट में आपको सुना देते हैं। माता ने शरीर में उपटन लगाया है, उसी में अपना तेज भर दिया है, और जया विजया से कहा देखो मेरा गण पैदा हो रहा, गणेश भगवान प्रकट हो गए। बोलिए गणपति भगवान
की जय।
अभी आगे भी कुछ बोलना है। गणेश का पूजन भी होना है अभी। अच्छा, लड्डू बनी गए हैं वो तो है ही है, भोग लगेगा। पैदा होते ही वो बड़े हो गए, वैसे उनका कद छोटा है, पेट बड़ा है, नाट्य मां मेरे लिए आज्ञा, बेटा मैं स्नान करने जा रही हूं, तुम गेट में खड़े हो जाओ, जब तक मेरा आदेश न मिले कोई अंदर नहीं आए। जो आज्ञा मां मैं पालन करूंगा, खड़े हो गए, मां स्नान करने लगे। वैसे बिना वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए स्त्रियों को, पुरुष को, वरुण देवता रहते हैं ना जल के अंदर। पर यह है कि अपना शरीर भी दूसरे को न दिखे, ऐसे कपड़े से के बाद स्नान करना अच्छा रहता है। आजकल परंपराएं टूटती जा रही, पुरुष भी वैसे कपड़े बिना पहने हो स्नान कर लेते हैं, स्त्रियां भी वैसे नहाने लगी, ऐसा नहीं। यहां भगवान शंकर ने सोचा मेरे गणों को अभिमान हो गया है, हमें कोई पराजित नहीं कर सकता है। भगवान पाप से घृणा नहीं करते हैं, भगवान अभिमान से घृणा करते हैं, क्योंकि जितने पाप होते हैं वो अहंकार से होते हैं, इसलिए अहंकार किसी में आया उसे भगवान दबा देते हैं। समझ में आ रहा है नहीं? तो भगवान शंकर ने कहा मैं पार्वती के महल में जाना चाहता हूं, गणों से कहा जाओ रास्ता बनाओ, गए सबको तो अलग कर दिया, ये दरवाजे पर खड़े थे, हटो हटो भोलेनाथ आ रहे। नहीं, मां की अनुमति के बिना कोई अंदर नहीं जा सके। तुम कौन हो? मैं पार्वती नंदन हूं, भगवान कृष्ण यशोदा नंदन देवकी नंदन है और ये पार्वती नंदन है। बिना वर्षा, बिना बादल की वर्षा हो गई, हम गणों को पता ही नहीं और तुम बेटे बन गए। हां कभी कभी ऐसा भी होता है, पर जब तक मां की अनुमति नहीं होगी, आदेश नहीं मिलेगा, कोई अंदर नहीं जा सकता। लौट गए, भगवान शंकर को सुना, भगवान शंकर डांट लगाई, तुम इतने सारे हो, एक छोकरा खड़ा है दरवाजे में, तुम उसे हटा नहीं सकते क्या? जाओ उसको हटा के आओ। तो चाहते थे ना शंकर जी के, थोड़ा इनको भी पहुंचे। और लड़ना, लड़ाई की बात जब चली तो महाराज गणों के पास तो अस्त्र शस्त्र भी थे, इनके पास केवल छोटा था इतना लंबा, वो जिस तरफ चला देते हैं
सब पिछ जाते,
किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर फूटा, किसी के पैर टूटे। भगवान शंकर के पास है, दूसरों को शंकर जी ने भेजा, वो भी इसी तरह टूटे फूटे लौट के आए। लंबी बातें हैं सब, अंत में भगवान शंकर स्वयं आते हैं। हटो नहीं प्रभो, मां का आदेश, बेटे के लिए पिता से मां का ज्यादा महत्व शास्त्र कहते हैं। यूं तो पत्नी पति से छोटी मानी गई है, लेकिन पुत्र के सामने पति से श्रेष्ठ मानी जाती है। माता का ज्यादा अधिकार, क्योंकि माता कष्ट बहुत उठाती है बच्चों के पालन पोषण में। आते हैं देवियां, देखते हैं 3 वर्ष के से पहले पहले के बच्चे संभालना बहुत कठिन होता है। गोद का बच्चा तो फिर भी गोद में लेटा हुआ, लेकिन जो चलने फिरने लगते हैं ना, हर समय मां का ध्यान वहीं रहता। प्रसव की पीड़ा, गर्भ धारण की पीड़ा, इसलिए शास्त्रों ने कहा कि कि पुत्र पर पिता से माता का 10 गुना ज्यादा अधिकार है। क्या? पितुर 10 गुना माता गौरवीणा तिरिच्छते, शास्त्र का वचन है। इसलिए माता कौशल्या ने साफ कह दिया, अगर केवल दशरथ जी की आज्ञा है कि तुम्हें बन जाना है तो माता बड़ी है, नहीं जाना है आप। पर माता पिता दोनों ने अगर आज्ञा दी है तो उनका पलड़ा भारी हो जाता, फिर तुम जा सकते। जो केवल पितुआ या सुताता,
जो केवल पितुआ या सुताता,
जन जाओ जान बड़ी माता। समझ में आया क्या? नहीं
जो
जन जाओ
यानी
बड़ी जान
माता।
बड़ी
माता,
माता बड़ी होती है, पर जो पितु मात कहो बन जाना तो कानन सतावत समान है। अगर कैकेयी ने और महाराज ने कह दिया तो वो पलड़ा भारी हो गया ना। बोले प्रभु, जब तक मां का आदेश नहीं मिलेगा किसी को अंदर जाने में, अरे मुझको जाने से क्यों रोक रहे हो? मां की आज्ञा है कोई ना आए, तो कोई ना आए में तो सभी शामिल हो जाते हैं। युद्ध प्रारंभ हो गया है, भयानक युद्ध हुआ है, देवता आ गए हैं बहुत सारे, देवताओं ने भगवान शंकर का साथ दिया है, उस तरफ अकेले हैं, यहां हजारों हैं, पर वह तो छोटा जिस तरफ चल गया चमा छुट्टे। भगवान शंकर भी पराजित जैसे नजर आने लगे, तब उन्होंने त्रिशूल से फरसे सिर काट दिया। जया विजया ने अंदर कहा, मां मां क्या हुआ? अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हुआ? आपके पुत्र का सिर काट दिया गया। फिर तो मां को भयानक क्रोध आया है, उस क्रोध में रोम रोम से देवियां प्रकट होती हैं, अगणित संख्या, और सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं, और कईयों के विकाल राल रूप भी हैं, कईयों के हाथ में विकाल शस्त्र भी हैं। जाओ प्रलय मचा दो, तब तक युद्ध बंद नहीं होगा जब तक मेरे पुत्र का नया जीवन नहीं होगा। फिर तो महाराज देवियों ने वो मार लगाई देवताओं को, खून की नदियां बह गई। नारद जी फिर अंदर गए, मां मां आपके क्रोध को कौन संभाल पाएगा? आप जगजननी हो, ये सारी संतानें आपका ही हैं, जननी मां को कहते हैं, तो आप सबकी माता हो। मां ने क्रोध में कहा, मत पुत्रो यदि जीवे तो, मत पुत्रो यदि जीवे तो तदा संघरणम नहीं, मेरा बेटा जीवित हो जाएगा संघार रुकेगा, नहीं तो संघार निश्चित है। आपात बैठक हुई देवताओं की, क्या किया जाए? भगवान शंकर ने कहा, उत्तर दिशा की ओर जाओ, प्रथम बच्चा जो नजराज उसको ले आना। हथनी ने अभी एक बच्चा दिया हुआ है, उसके माथे में लाल सिंदूर भी लगा हुआ है, समझ में आ रहा? तो सिर लेकर आके भगवान शंकर ने मंत्र अभिमंत्र जल का छींटा दिया, गणेश भगवान उठ करके खड़े हो गए।
गणपति भगवान की,
देवताओं ने पुष्प बरसाए, बाजे बजाए, जय जयकार की हुई है। भगवान शंकर ने अंत में कहा है, ये गणाध्यक्ष हैं और सर्वाध्यक्ष, दो पद मिले हैं। सर्वाध्यक्ष माने समग्र देवताओं के अध्यक्ष हैं, और गणाध्यक्ष माने
गणों के अध्यक्ष,
गणों के अध्यक्ष। इनकी पूजा किए बिना जो दूसरे देवताओं की पूजा होगी व्यर्थ हो जाएगी। पहले गणपति का पूजन करना है, उसके बाद दूसरे देवताओं का पूजन करो, तब सफलता मिलेगी। और कहीं भी जाना है, कोई भी कार्य करना है, इनका स्मरण, इनका पूजन वंदन होता रहेगा, तो आपका कार्य निर्विघ्न परिपूर्ण होते रहेंगे। आशीर्वाद मिला है, गणेश जी का पूजन होगा, गंधार चतुर्थ, जय गणेश। चलो भाई,
जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, मंगल जगत मार्ग की पिता हूँ मैं।